लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कैथोलिक विश्वासी युक्रिस्तीय समारोह को अपने हृदय के केंद्र में रखकर मानवीय रिश्तों को रूपांतरित करने में सक्षम बने तथा अपने समस्त भाइयों एवं बहनों और ईश्वर के संग साक्षात्कार के प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टर सुमन अनिमा टोप्पो के साथ वे भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलता पूर्वक उतारना हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। इसके साथ ही विकास की नई उम्मीदें जाग गई हैं। दुनिया भर में लोग भारत को एक सम्मान की नजर से देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम पृथ्वी की देखभाल में अपना विशेष योगदान दे पाएंगे तो हम सचमुच महान बनेंगे। पृथ्वी की देखभाल आज एक महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है, जो न सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिक संगठनों की बल्कि हम प्रत्येक की जिम्मेदारी है। इसकी देखभाल करने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पर छोटे मोटे कार्यों से पृथ्वी की देखभाल कर सकते हैं। अपने परिवार, स्कूल या कार्यालय में ऊर्जा का सही प्रयोग कर और उपकरणों को समय पर बंद कर हम बिजली बचा सकते हैं। पानी को व्यर्थ न बहाकर या बर्बाद कर अपने घर के कचरे को उचित तरीके से प्रबंधित कर कंपोस्टिंग या अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को अपनाकर प्लास्टिक और अन्य कचरों की मात्रा को कम कर हम पृथ्वी की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कर और नए पौधे लगाकर भी हम पर्यावरण की रक्षा में सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हवा की गुणवत्ता में सुधार होती है। ये कार्बन को अपने आप में सोख लेते हैं, जिससे वायरस के फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। निजी गाड़ियों की अपेक्षा अगर संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों को पृथ्वी की देखभाल के महत्व के बारे बताकर भी अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। इस तरह ये छोटे कदम सही दिशा में एक साथ मिलकर बड़े परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। इसी विचार को अपनाते हुए सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी की धर्म बहनों ने अपने धर्म समाज में नया संकल्प लिया है। सिस्टर सुमन अनिमा टोप्पो, जो इस धर्म समाज की सदस्य हैं, आज हमें बतला रही हैं कि वे अपने धर्म समाज में पृथ्वी की देखभाल किस प्रकार करती हैं और भविष्य में आम घर की देखभाल के लिए क्या करना चाहती हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है सिस्टर सुमन अनिमा टोप्पो के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
हमारे धर्म समाज का मुख्य काम है शिक्षा, लोगों की सेवा करना, हेल्थ केयर, सोशल वर्क, और अभी तो जैसे स्ट्रीट बच्चे हुए सारों को दिए, जैसे जैसे समय के अनुसार उनकी मांग बढ़ रही है, हमारे सिस्टर्स उनमें जा रही हैं।
तो जब भारत में पहली बार आए तो कहाँ शुरुआत हुई?
लाहौर में ये लोग आई हुई थी।
अच्छा, उसके बाद में अभी किस किस क्षेत्र में हैं?
अभी हमारा धर्म समाज पाकिस्तान में है, और भारत में दो प्रोविंस हैं, रांची और दिल्ली। श्रीलंका में है, अभी वियतनाम और फिलीपींस में भी है, फिर इधर अफ्रीका में कोंगो, रुवांडा और माली।
सिस्टर सुमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बतलाया कि आप चैप्टर में भाग लिए हैं और उसके बाद यहाँ आई हैं, तो चैप्टर में आप लोगों ने किन मुद्दों पर विशेष रूप से बातें की हैं, किन विषयों पर चर्चा की है?
हमारे चैप्टर में चार मुद्दों पर विशेष तौर से बातें हुई हैं। पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अभी जैसे इस दुनिया में जरूरतें आ रही हैं। अगर हम अपने अपने क्षेत्र में केवल व्यस्त हो जाएंगे तो दूसरे साइड में कौन उनकी देखरेख करेगा। तो उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एक पहला मुद्दा था
जी।
दूसरा मुद्दा था प्रकृति की देखभाल करना। प्रकृति की देखभाल करना आज एक चिंतन का विषय बन गया है, इसलिए इसको हमारे चैप्टर में बहुत जोर से ध्यान दिया गया है। तीसरा मुद्दा था जरूरतमंदों की देखरेख करना। उसमें भी लोग जहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए भी हम लोग अपने समाज के जगह में केवल नहीं लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में बिना भाषा बिना धर्म उस तरह के लोगों के ऊपर बात करने की हो रही थी।
जैसे आपने कहा कि ये पृथ्वी की देखभाल प्रकृति की देखभाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर संत पापा भी बहुत जोर दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरह कार्यान्वित करना चाहते हैं?
इसके लिए हम अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना चाहते हैं। विशेषकर तो हम लोग ये बात किए कि अपने अपने कम्युनिटीज में हम किस तरह से पानी का बचत कर रहे हैं, अगल बगल में किस तरह से हम लोग अपने से बगान सबका ध्यान रख रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, उसमें से पैदावार जो हो रहा है उसका सेवन कर रहे हैं। दूसरा कि नहीं लोगों को बचाने के लिए कुछ अपने से बचत करके उनको देने की हो रही है, इस तरह की बातें की हुई है।
बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हीं को करते हुए हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं अपने स्तर पर। आगे मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इन सब मुद्दों पर बात करने के बाद आपने क्या निर्णय या संकल्प लिया है भविष्य में अपने धम्म समाज के लिए?
इसके लिए हम कुछ कदम बना कर रखा हुआ है एक एक्शन प्लान की तरह, और उसको जीने के लिए शुरू करना ही होगा, इस तरह का जोर दिया गया है।
तो आप अपने धम्म समाज के भविष्य की क्या उम्मीद करते हैं?
हमारे धर्म समाज को लेकर के मुझे बहुत एक आशा की किरण है, क्योंकि हम छोटे छोटे नंबर में ही आ रहे हैं, युवा पीढ़ी जो छोटे छोटे नंबर में ही आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो जोश देखी जा रही है उसको देख के लगता है कि नहीं अभी भी हमारे धर्म समाज की में आशा की किरण जगी है। और मुझे लगता है कि ये छोटे नंबर के साथ ही हम लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर कुछ नहीं है लेकिन हमारा जो क्वालिटी होगा वो बहुत कुछ कर सकता है।
जरूर, कम संख्या में ही बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत अच्छी बात। तो आपको पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका व्यवहार। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने कभी अपने दोस्त से यह कहते सुना होगा कि वह गाड़ी में यात्रा कर रहा था, फोन पर बातें कर रहा था, तभी उसका बस स्टॉप पहुंच गया और वह तुरंत नीचे उतर गया और उसका बैग गाड़ी पर ही रह गया। वह बहुत परेशान था क्योंकि बैग में उसके जरूरी कागजात थे, रुपये भी थे और जरूरी चाबियां भी थीं। पर दूसरे दिन एक आगंतुक उसका पता खोजते उसका बैग पहुंचा देता है। वह व्यक्ति बैग मिलने की खुशी को प्रकट कर पाएगा? शायद नहीं। क्या वह उस अजनबी को भूल पाएगा? शायद जीवन भर भूल नहीं पाएगा। ऐसे व्यवहारों को परोपकारी व्यवहार कहा जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो दूसरों को पहले स्थान पर रखते हैं और वास्तव में अपने आसपास के लोगों की परवाह करते हैं, भले ही उनका उनसे व्यक्तिगत संबंध हो या नहीं। परोपकार से आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। सच्चा परोपकार वही है जो कर्तव्य समझकर किया गया हो। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका व्यवहार।
अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, टाइम हो रहा है तुम्हारे निकलने का।
कर रहा हूँ यार, ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ। तुम अपनी तैयारी तो देखो।
अपनी तैयारी क्या देखूँ, मैं तो तुम्हारे बाद ही निकलती हूँ अपने ऑफिस के लिए।
हाँ वो तो है रितु, मुझसे अच्छी तो तुम ही हो। तुम्हारा ऑफिस वाले कम से कम ऑफिस का इंसानों की तरह तो ख्याल रखते हैं। एक हमारा ऑफिस है, लगता है वो इंसानों के लिए नहीं है।
इंसानों के लिए नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम?
अब ऐसा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ फिर?
मगर ऐसा कहने का कोई कारण भी तो होगा ना।
तुम ही सोचो रितु, अपने घर से मेरा ऑफिस कितनी दूर है और सही समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे अपने घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है।
अरे तो ऑफिस वाले तुमसे एडजस्ट क्यों करेंगे, बल्कि तुम्हें ही उनसे एडजस्ट करना पड़ेगा ना।
क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी भागकर ऑफिस के लिए बस पकड़ो और रात को या शाम को उतनी ही देर से वापस आओ।
देर से ही सही, कम से कम घर लौट तो आते हो। अरे जरा उनकी सोचो जो बेचारे अपने घर परिवार से दूर रहकर कहीं दूर नौकरी करते हैं।
मैं तो पास के शहर में नौकरी करने जाता हूँ। अगर हमारे बच्चे होते ना तो सुबह नौकरी पर निकलते समय वो सोए रहते और शाम को मेरे लौटते समय भी वो मुझे सोए ही मिलते।
हाँ और फिर संडे को तुम्हें घर पर देख करके मुझसे पूछते कि मम्मी ये कौन है।
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो यार, फिर तो मेरे बच्चे ही मुझे नहीं पहचानते।
चलो अभी कम से कम ऐसा टाइम आने में बहुत देरी है।
अच्छा है कि अभी ऐसा समय आने में समय है, वरना मैं तो अपने ही घर में अजनबी बनकर रह जाता।
क्यों अजनबी बनकर क्यों रह जाते तुम, कम से कम मैं तो तुम्हें जरूर पहचानती।
अरे तुम्हारे पहचानने से क्या होता है, उत्पाद को भी तो अपने उत्पादनकर्ता को पहचानना चाहिए।
बच्चे होंगे तब तुम्हें पहचानेंगे ना, फिलहाल तो तुम अपने लंच बॉक्स को पहचान लो और अपने ऑफिस कैरी बैग में रख लो, यहाँ भूल गए तो वहाँ कैंटीन का बासी माल खाना पड़ेगा।
लाओ इधर दो।
लो
आज लंच में क्या बनाया?
टिंडे की सब्जी।
ओहो रितु, तुमसे कितनी बार कहा है कि लंच में मुझे ये बेस्वाद सब्जी मत बना कर दिया करो, ऑफिस में फिर भूखा ही रहना पड़ता।
अब आप बेस्वाद सब्जी खाना भी सीख ही लो। पता है एक तो सब्जियां बाजार में है ही नहीं, और है भी तो उनके भाव आसमान पर हैं।
तुम समझती क्यों नहीं हो यार, सब्जियों के भाव आसमान पर चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या हम दोनों कमाते नहीं है? और फिर अभी खाने वाला है भी कौन हमारे सिवा?
तुम कुछ भी कहो, दालों के भाव भी कोई सस्ते नहीं है। फिर ऑफिस से लौटते समय, शाम को सब्जी खरीदते समय जो भी सब्जी मिलती है वही लाना भी पड़ता है।
कभी तो कुछ ढंग का बनाकर खिलाया करो यार।
लो फिर खुद ही बनाकर फ्रिज में रख दिया करो।
अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, संडे को हफ्ते भर की सब्जियां फ्रिज में लाकर भर दिया करूँगा।
अच्छा है अमन, फिर तो ऑफिस से छूटकर सब्जी खरीदने से मुझे फुर्सत तो मिली जाएगी।
अरे हाँ आज तो 1 तारीख और तुम्हारा सैलरी है, क्यों?
तो क्या हुआ, तुम्हारा नहीं है क्या?
वो तो है, लेकिन आज शाम को रात के खाने में तुम क्या खिला रही हो?
बोलो क्या खाना चाहते हो?
ऑफिस से लौटते समय चिकन पार्सल बनवा लाना, और क्या।
और तुम क्या खिलाओगे?
वही जो तुम्हें पसंद है, कुछ भी बोलो, तुम बहुत अच्छी हो यार।
क्यों क्यों मक्खन लगा रहे हो, गर्मी बहुत है, पिघल जाएगा।
अच्छा मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ।
अच्छा ठीक।
आ गई तुम, क्या बात है रितु, आज तो तुम्हें बहुत देर हो गई।
हाँ अमन।
क्यों काम ज्यादा था क्या, और ये तुम्हारा हैंडबैग कहाँ गया?
अमन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
अच्छा पहले ये रोना धोना बंद करो और शांति से मुझे बताओ हुआ क्या है। मैं अभी तुम्हें फोन लगाने ही वाला था, मुझे आए 15 मिनट हो गए। बोलो क्या हुआ।
आज ऑफिस से ऑटो करके मैं सीधे टेस्टी पॉइंट होटल चली गई और वहां से तुम्हारे लिए चिकन पार्सल करवाकर सब्जी ली और फिर अपने घर आ ही रही थी। अपनी कॉलोनी के बाहर की सड़क पर मैं उतर गई और वहाँ ऑटो वाला चला गया, लेकिन मेरा बैग उसी में रह गया। अमन,
ओह, उसमें तुम्हारे महीने भर की तनख्वाह भी रखी होगी।
महीने भर की तनख्वाह के साथ मेरी बस का मंथली पास, मोबाइल फोन और मेरी स्कूटी का लाइसेंस भी और एटीएम कार्ड भी था।
सचमुच तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई रितु।
मैंने उसी रोड पर आगे जाकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, दूसरे ऑटो वालों से भी पूछा, लेकिन उसका पता ही नहीं चला।
आखिर तुमने ऑटो लिया ही क्यों, रोज की तरह तुम बस से आ जाती।
मुझे रेस्टोरेंट भी जाना था इसलिए मैंने ऑटो कर लिया और ऑटो से ही मैं कॉलोनी आ गई।
तुमने ऑटो का नंबर नहीं देखा था।
अब मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। आज दोनों हाथों में पैकेट थे, एक पार्सल का और एक सब्जी का। मैं सोची कि बैग एक हाथ में ही है, बस इसी चक्कर में मैं पर्स उठाना भूल गई।
मेरे ख्याल से उस हैंडबैग को भूल जाना ही बेहतर है।
मगर हम उसे ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं।
कैसे, कैसी कोशिश कर सकते हैं हम? ऑटो का नंबर हमारे पास है नहीं और ड्राइवर का हुलिया भी तुम्हें याद नहीं होगा। अब जिस गुमी हुई चीज की कोई आशा ही नहीं है उसके बारे में सोचकर परेशान होकर क्या फायदा। अब छोड़ो भी, जो होना था वो हो गया।
पर हमें पुलिस में रिपोर्ट तो करना ही चाहिए।
रात हो गई है, कल सुबह देखेंगे, वैसे भी रिपोर्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है।
सॉरी अमन।
कोई बात नहीं रितु, तुम फिक्र छोड़ दो। रितु जल्दी करो यार, थाने पर रिपोर्ट लिखवाकर हमें बैंक मैनेजर से भी एटीएम कार्ड के सिलसिले में मिलने जाना है।
चलो बस ताला लगाकर घर बंद करना ही है।
रितु श्रीवास्तव आप ही का नाम है मैडम?
हाँ क्यों?
मैडम ये हैंडबैग कल शाम को आप ऑटो में भूल गई थी।
हाँ हाँ अमन, ये तो मेरा ही पर्स है।
ओहो, तो तुम ही वो ऑटो वाले हो।
हाँ साहब, इनको छोड़कर कल शाम को जब हम सीधे अपने घर खाना खाने पहुंचा ना, तो मुझे पिछली सीट पर ये आपका बैग पड़ा मिला। पहले तो मैंने सोचा कि खाना खाकर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के पते पर जाकर आपका ये पर्स लौटा दूंगा, फिर सोचा सुबह जल्दी घर ढूंढकर आपका पर्स लौटा दूंगा।
भैया आपने सचमुच मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है, हमने तो इसके मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। अभी हम पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाने ही जा रहे थे।
तुम्हारा नाम क्या है भाई?
जी मेरा नाम मोहन है साहब, आप चेक कर लीजिए साहब, उसमें सारा सामान सही सलामत है ना।
मोहन, जब तुम्हारे जैसा कोई ईमानदार इंसान गुमी हुई चीज लौटा रहा हो तो सामान को चेक करके उसका अपमान मैं नहीं कर सकता। ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सामान पूरा ही होगा।
हाँ भैया, अगर तुम्हें कुछ रखना ही होता तो तुम मेरा सामान लौटाते ही क्यों?
अच्छा मोहन, ये कुछ रुपए रख लो, बच्चों को मिठाई खिला देना।
नहीं साहब, मुझे तो अपनी मेहनत का पैसा ही अच्छा लगता है। फिर साहब, किसी की खोई हुई चीज को लौटाकर मन को जो खुशी मिलती है ना साहब, वो इनाम से कहीं ज्यादा होती है। साथ में एक संतोष भी मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है।
तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे हैं मोहन भैया।
मैडम, जिंदगी में बुराई करने के मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छाई करने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। आज मुझे भी इस मौके का फायदा उठा लेने दी।
वाकई मोहन, तुम जैसे लोग ही महान हैं, जो अपनी गरीबी में भी भलाई के अवसर का लाभ उठाना नहीं भूलते।
अरे नहीं साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ जी।
व्यवहार। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिनेश सोलंकी, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।